Very happy to be here today as we continue with Purushottam Yoga. I don't know in your side, Kuwait, if it is the final day of Purushottam today.
Yes, Prabhu. Yes, Prabhu.
Today is the final day also here in London. So we are meditating on Krishna's instructions in this wonderful day. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. So today we are continuing with the 15th chapter of the Bhagavad Gita.
हम सब 15वें अध्याय को फिर से सतत रूप से उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं.
Before we continue on, we will have a short quiz.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी होगा.
My first question is, I gave you one word which summarizes, one acronym which summarizes the whole chapter 15. If anyone knows the answer, please type on the chat.
Om.
Oh, Prabhuji, Vasanta Prabhu. He says, oh, he's too quick.
तो प्रभु ने कहा कि एक शब्द दिया था प्रभु जी ने पिछले सप्ताह में पूरे अध्याय को सार रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक शब्द तो वो आप लिख सकते हैं तो वसंता प्रभु लिख दिया है चैट बॉक्स में.
Very good. Answers in the chat box. Then we will see who is quickest. So, what does the letter H stand for?
तो उसमें जो एच शब्द है वो क्या?
Raj Prakash is the translation and giving the answer. Hare Krishna. He says hotel. Yes, home or hotel. And what does the O stand for?
On and on.
On and on. Very good. Hare Krishna. Very nice. And does anyone remember what M stands for?
Maintainer.
Yeah, maintainer. Very good. And E?
Essence of Gita.
Essence of Gita. Excellent. All right. Wonderful. Wonderful. So, I will share with you my PowerPoint presentation and then we will continue on from. We will first summarize last week and then we'll continue this week. So as we've been discussing, the acronym for the chapter is HOME, and these four aspects are covered in this chapter.
So just हमने पिछले सप्ताह में श्रवण किया था कि इसके पुरुष अध्याय का जो सार है वो होम के नाम से प्रबंधित किया है और ये हम पूरे अध्याय में इसको कवर कर रहे हैं.
The first two aspects we covered last week, and this week we will cover the final two aspects.
तो दो जो अक्षर हैं इस शब्द के वो हमने पिछले सप्ताह में श्रवण किया था और आज दो बाकी जो अक्षर हैं वो आज हम लोग श्रवण करेंगे.
Last week we talked about how Krishna compares the material world to a banyan tree.
और हमने ये भी श्रवण किया था पिछले सप्ताह में किस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत की सृष्टि की तुलना उस एक वट वृक्ष से करते हैं, अश्वत्थ वृक्ष से.
The real banyan tree is the spiritual world, but the reflection of the banyan tree is the material world.
तो जो वास्तविक या अश्वत्थ वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत में है, उसका जो प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत में है.
Everything in this world is upside down.
इस जगत में सब कुछ जो है वो
the things that people think are good are actually bad for them.
और जो सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा यहाँ पर वो एक्चुअली बुरा होता है.
But the things that are actually bad for them, they think are very, very good. They are the goal of life.
लेकिन जो सोचते हैं कि वो लोग उनके लिए ठीक नहीं है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो उनके लिए जीवन का लक्ष्य हो सकता है.
In this world, people accept irreligion as religion.
इस जगत में लोग अधर्म को धर्म मानते हैं.
And they think religion is actually bad, irreligious.
और लोग सोचते हैं कि जो धार्मिक धर्म है वो अधार्मिक कार्य है.
And therefore, in this world, no one is actually finding happiness because all of their understanding of life is incorrect.
और इसीलिए कोई भी आनंद नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबकी जो समझ है वो गलत है.
If you try to collect fruits from the reflection of the tree in the water, only you will end up getting wet.
अगर आप उस प्रतिबिंब जो कि छाया जिसकी दिख रही है जल के अंदर जलाशय के अंदर उससे फल पाने का प्राप्ति करेंगे फल पाने की चेष्टा तो खाली हम गीले होंगे फल नहीं मिलेगा.
Therefore Krishna is saying we have to learn to leave behind this reflection and focus our attention on the real spiritual world.
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको इस छाया के पीछे अपना जीवन व्यतीत करने को इस सिद्धांत को छोड़ करके और जो वास्तविक वृक्ष जो अर्थात आध्यात्मिक जगत उसके लिए प्रयास करना चाहिए.
We can never really go to the spiritual world unless we become detached from the material world.
और आध्यात्मिक जगत में हम तब तक जब तक कि हम भौतिक जगत से अनासक्त न हो जाएं.
In Srila Prabhupada's final days, they asked him, Srila Prabhupada, do you require anything?
I'm sorry, but I missed the last part, Prabhu.
Okay. In Srila Prabhupada's final days, they asked him, Prabhupada, can we get you anything? Do you need anything?
तो श्री प्रभुपाद जी के अंतिम समय में उनके शिष्य लोगों से पूछे थे कि आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं श्री प्रभुपाद जी, क्या आपको हम दे सकते हैं.
And Srila Prabhupada just looked at them and said, "Kuch ichha nahi. I have no material desire."
Srila Prabhupada ji unki or dekha aur kaha ki mere andar koi ichha nahi hai.
So who in this world can say like that? How many of the devotees on the call can say, "I have no desires left for happiness in this world"?
तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कौन अभी जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी जो जुड़े हुए हैं, कौन कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है.
Srila Prabhupada said at the end of this life, even if you have one desire left to taste the gulab jamun, then you will have to come back to the world to taste it.
श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी के अंदर एक एक इच्छा भी रह जाए, अगर कि उनको गुलाब जामुन का स्वाद चखना है, तो उनको इस भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ेगा.
Therefore, we have to transfer all of our desires to spiritual desires, desires to serve Krishna.
इसलिए हमको अपनी सभी इच्छाओं को मोड़ना होगा और उसको आध्यात्मिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने की इच्छा बनानी होगी.
Therefore, in this Bhagavad Gita and in Krishna's teachings, Krishna is always revealing to us that this world is not a nice place.
इसलिए भगवत गीता में और भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि ये जो स्थान है ये जगत वो एक उचित स्थान नहीं है रहने के लिए.
Every day we should have the darshan that this world is dukhalayam, ashashvatam, temporary and miserable.
तो प्रतिदिन हमको ये दर्शन होना चाहिए कि ये जो जगत है वो एक अस्थाई स्थान है और दुखालयम है.
Therefore, many times the material world is described as a place of suffering, family life is described as a deep dark well, and the material body is described as a place of suffering.
इसलिए कई स्थानों पर इस भौतिक जगत को बताया गया है कि ये कष्ट का स्थान है और पारिवारिक जीवन वो एक अंधकूप के समान है और ये जो भौतिक शरीर है वो कष्टों से परिपूर्ण है.
But when we use the material world, we use family life, we use the material body to serve Krishna, then the material world becomes full of happiness, family life becomes very peaceful, and the body gives us the greatest benefit.
लेकिन जब हम वही भौतिक संसार और ये हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा शरीर भगवान की सेवा में उपयुक्त करते हैं, तब ये स्थान हमारे लिए एक सुखमय स्थान बन जाता है. पारिवारिक जीवन बहुत आनंद से रहता है और हमारा शरीर भी फिर हमको वो कष्ट नहीं देता.
The quality of our life depends on the quality of our consciousness.
तो हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे चेतना की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर है.
But Krishna explains in the Gita, if we have material consciousness, then we will go on and on in the material world, again and again, taking birth in material bodies.
तो भगवान श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि अगर हमारी भौतिक चेतना है तो हम भौतिक जगत में बार बार हमको आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और उसी चेतना में रहना होगा.
According to our desires and activities and our spiritual credit, under the supervision of Krishna, we receive our next body.
तो अपने कर्मों की वजह से और भगवान की अध्यक्षता में की दृष्टि के अंदर हमको ये जो शरीर है हमारी इच्छाओं के अनुसार शरीर हमको प्राप्त होता है.
Our body comes with certain things.
तो शरीर में जब हम शरीर प्राप्त करते हैं तो कुछ चीजें उसमें निहित होती हैं.
We are surrounded by certain types of people. We are given certain amounts of wealth. We have a certain amount of beauty, and we have also, Krishna gives us some certain amount of education or intellectual capacity.
तो जैसे हमको अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार जो है हमको परिवार और लोग मिलते हैं, हमको धन प्राप्त हो सकता है, सुंदरता और शिक्षा ये हमारे प्रारब्ध के सार हमको प्राप्त हो सकता है.
If we are trying to increase these things and become more prosperous by having more of these things, then we will never be able to approach Krishna with sincerity.
तो अगर हम इसी के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं और इसी पे हम इसमें फंस जाते हैं, इसमें भ्रमित हो जाते हैं इन चीजों में, तब हम भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं हो पाएंगे.
Therefore, Kunti says, we've been given these things. Now, don't try to increase them too much. Whatever has been given, use it in Krishna's service. And in this way, go back to Godhead.
तो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि ये चीजें हमें जो दी गई हैं, इसको और हमको नहीं बढ़ाना चाहिए और इससे अनासक्त होकर के हमको अपनी कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावना भावी जीवन को बढ़ाना चाहिए.
So now we move on to the third section of chapter number 15.
तो ये हमने श्रवण किया था पिछले सप्ताह में और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 15वें अध्याय के तीसरे भाग में.
As the atma or the soul goes through many, many lifetimes in the material world, throughout all of those lifetimes, Krishna is maintaining the living entity.
तो जब आत्मा कई बार 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 पुनर्जन्म पुनर्रूपी वो शरीर धारण करते रहते हैं, हमेशा सदैव भगवान श्री कृष्ण ही उनका पालन करते हैं.
Krishna provides everything we need.
तो भगवान श्री कृष्ण वो सब कुछ उपलब्ध कराते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है.
Therefore is explained nityo nityanam chaitanas chaitananam eko yo vidadati kaman, that there is the supreme eternal and there is the soul who is also eternal, but the supreme is always maintaining and the individual soul is always maintained.
तो इसलिए उपनिषद में बताया गया है कि नित्य रूप से शाश्वत रूप से आत्मा और परमात्मा रहते हैं, लेकिन जो भगवान है परमात्मा वही सभी आत्मा का उनका पालन करते हैं और सभी जो आत्मा हैं वो उनके द्वारा पालन किए जाते हैं.
So here Krishna explains in this beautiful verse of the Gita. Prabhuji, you can just translate into Hindi.
तो 15वें अध्याय की 14-15 श्लोक में यहाँ पर बताते हैं कि मैं जो है वो पाचन शक्ति हूं सबके शरीर में, और यस प्रभु आई एम जस्ट
या नो प्रॉब्लम
और जो प्राण वायु है और जो चार प्रकार की पाचन क्रिया होती, चार प्रकार के जो भोजन ग्रहण किए जाते हैं उसकी जो पाचन होती है वो भी मैं करता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं और मुझसे ही स्मरण और ज्ञान और विस्मृति भूलने की जो क्षमता है वो भी आती है, और सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जाने जाना चाहिए क्योंकि मैं ही वेदों का रचयिता हूं और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं।
This verse is very, very powerful. If you look closely, then Krishna is saying something very, very deep.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये श्लोक बहुत ही शक्तिशाली है, अगर इसको आप बहुत सूक्ष्मता से ध्यान से देखेंगे तो बहुत गंभीर वस्तु इसमें छुपी है।
Krishna is protecting our gross body, which is made up of earth, water, fire, air and ether.
तो भगवान श्री कृष्ण हमारे स्थूल शरीर की रक्षा कर रहे हैं जो कि जो पंच धातु से बना हुआ है।
Krishna gives fruits, Krishna gives vegetables. Not only that, but Krishna gives us a body and creates a fire of digestion within the body so that we can convert all of those fruits and vegetables into energy.
तो भगवान श्री कृष्ण हमको सभी सब्जियां, फल, अन्न वो सब देते हैं, और उतना ही नहीं उसके साथ ही साथ हमारे अंदर वो पाचन की जो जठर अग्नि है वो भी देते हैं, जिससे कि ये सभी वस्तुओं को हमारे पौष्टिकता के लिए उसको उसमें परिवर्तित किया जा सके।
Maybe there are a few doctors who are on this call, but otherwise practically 100% no one in the world knows even how they are able to digest food.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं तो शायद वो जानते होंगे, नहीं तो कोई जानते नहीं है कि कैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं कैसे उसका पाचन होता है।
Yeah, every day we are eating food and somehow we are living because the machine is working.
तो हम लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं और हम जीवन जी रहे हैं क्योंकि मशीन अंदर काम कर रहा है हमको, लेकिन ज्ञात नहीं कैसे काम कर रहा है वो यंत्र।
This is all going on by Krishna's mercy.
ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है।
Sometimes one person will just wake up in the morning and the body is no longer functioning normally.
कभी कभी कोई ऐसे एक सुबह प्रातः काल सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनका शरीर का यंत्र कार्य नहीं कर रहा।
We may do so much exercise, we may take so many medicines, we may take so many precautions, but still we ourselves cannot maintain this body. This is done by a higher power.
तो हम लोग कुछ व्यायाम कर सकते हैं, बहुत सी दवाएं ले सकते हैं, बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि इसका पालन अंततः भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं।
That doesn't mean we should not exercise, it doesn't mean we should not take medicine, it doesn't mean we should not care for our body. We should, but even if we do, still ultimately it's all in Krishna's hands.
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना व्यायाम नहीं करें, दवा नहीं लें, ये ठीक है, ये करना है, लेकिन हमें समझना होगा कि अंततः हमारा पालन वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं।
Not only does Krishna maintain our physical body, but he also maintains our subtle body, which is made up of mind, intelligence and ego.
तो भगवान सिर्फ हमारे स्थूल शरीर का ही ध्यान नहीं रखते, उसके साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म शरीर जो कि मन, बुद्धि और अहंकार, उसका भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।
Sometimes people ask, if we had a previous life, why do we forget who we were? Why can't we remember?
कभी कभी लोग पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि अगर हमारा पिछला जन्म था, पुनर्जन्म होता है तो हमको पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं है, क्यों सब कुछ विस्मृति हो गई है?
But Krishna is also giving us forgetfulness because if we remembered everything from the previous life, we would not be able to function in this world like a normal person.
तो ये भी भगवान की कृपा है कि भगवान ही विस्मृति देते हैं, भूलने की क्षमता, क्योंकि अगर हमें सब कुछ स्मरण होगा पिछले जीवन का तो हो सकता है कि इस जीवन में हम अपना एक सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाए।
If we want to enjoy material life, then Krishna gives us forgetfulness of previous lives.
क्योंकि अगर हम इस जगत में आनंद पूर्वक भोग करते हुए रहना चाहते हैं आनंद से सुख पूर्वक तो हमको पिछले जीवन की सभी बातों को भूलने के लिए भगवान हमें शक्ति देते हैं.
If we have a strong desire to achieve something in this world, then Krishna will also give us the knowledge so we can achieve that thing.
और कुछ बहुत तीव्र इच्छा है संसार में कुछ ज्ञात करने की प्राप्त करने की तो भगवान हमको वो ज्ञान भी प्रदान करते हैं जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें.
And if we have a strong desire to reconnect and re-establish our relationship with Krishna, then he also gives us remembrance of him.
और अगर हम हमारे अंदर तीव्र इच्छा है भगवान को स्मरण करने की उनकी सेवा करने की तो भगवान हमको वो स्मरण भी प्रदान करते हैं.
All of our mental capacities are also protected by Krishna.
तो सभी हमारे जो मानसिक शक्ति हैं उसकी रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं.
But Krishna does not just maintain the gross body and subtle body. Ultimately, Krishna maintains the soul, who we actually are.
तो भगवान केवल स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर की रक्षा नहीं करते बल्कि बहुत महत्वपूर्ण वो हमारी आत्मा जो हम हमारा अस्तित्व है उसकी रक्षा भगवान करते हैं.
And how does Krishna maintain the atma? Because he says Vedanta Krit Vedavit Eva Chaham, I maintain the Atma by giving access to the Atma, by giving access to spiritual knowledge, the Vedanta. This is how I maintain the Atma.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व बता रहे हैं प्रभु जी कैसे वो आत्मा का पालन करते हैं पुष्टि तो भगवान कह रहे हैं कि वो वेद वेदांत जो शास्त्र है पुराण है उसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उस आत्मा को पुष्ट करते हैं उनका पालन करते हैं.
चैतन्य चरितामृत एक्सप्लेन्स माया मुग्धा जीवरा नहि स्वत कृष्ण ज्ञान दैट द स्पिरिट सोल्स इन दिस वर्ल्ड आर कंफ्यूज्ड एंड दे हैव नो नॉलेज ऑफ हु दे आर.
तो श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि जो माया मुग्ध जीव है उनके पास वो इतने भ्रमित है कि उनको स्वतः ये ज्ञान नहीं है कि वो कौन है.
Jivare kripaye koile Krishna ved puran. Therefore, to give kripa, to give compassion and mercy to the spirit soul and help the spirit soul, Krishna basically compiles all the Vedic shastra in order to give the knowledge to the spirit soul.
इसीलिए जीवों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने सबको ये आध्यात्मिक ज्ञान वेद और पुराण के रूप में दी है जिससे कि वो जान सके उनको ज्ञान हो सके.
So now we can understand how in these verses of the 15th chapter, we're learning how on all levels we are protected and maintained by Krishna.
तो अभी हम लोग समझ सकते हैं इतने सुंदर रूप से प्रभु जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर एक अवस्था में हमारे शरीर सूक्ष्म शरीर और आत्मा का वो कैसे पालन कर रहे हैं.
Now, of all of these types of protection or maintenance that Krishna gives, which one do you think is most important?
तो इन सभी चीजों में जहां पर भगवान अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं पालन करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं.
Is it most important that he maintains the gross body, the subtle body, or the soul, or all of them, or none of them? What is your feeling? Please write on the chat.
तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका क्या अनुभव है कि इसमें से कौन सा सब कुछ महत्वपूर्ण है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या आत्मा.
Vasanta Prabhu says spirit soul. Ranchar Krishna Prabhu says the soul. Maybe some of you feel all of them. I don't know. Purvesh Prabhu says all of them. Mayapur Dham Prabhu says all of them. Very good. Actually, you're all right. In one sense, it's Krishna's mercy that he protects all of them. However, the most important for us is that he protects the spirit soul.
तो सभी के उत्तर प्रभु जी कह रहे हैं कि सही है भगवान श्री कृष्ण अपनी जो उनका पालन करने की जो शक्ति है जो वो कृपा है वो सभी पर है सभी अवस्थाओं में लेकिन उसमें से जीवात्मा होने के नाते आत्मा की सुरक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण है.
बिकॉज द मटेरियल एलिमेंट्स, द ग्रॉस बॉडी एंड द सटल बॉडी, इवन इफ कृष्णा मेंटेन्स एट सम पॉइंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, दे विल बी डिस्ट्रॉयड.
क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वो चूंकि भौतिक वस्तुएं हैं, तो अगर भगवान वो उसको पालन करते भी हैं तो उनका स्वभाव इस प्रकार से है प्रकृति का कि उनको धीमे धीमे क्षय होना है या नाश होना है उनका.
इन द भगवद गीता कृष्ण सेज ऑफ द मटेरियल देयर इज नो एंड्योरेंस एंड ऑफ द स्पिरिचुअल देयर इज नो सेसेशन.
तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भौतिक चीजें हैं उनको हम सतत रूप से उसको रख नहीं सकते, और जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं उसमें कोई कमी नहीं आती, क्षय नहीं होता.
Sometimes devotees question, why is Krishna not protecting the Vaishnavas?
कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वैष्णवों की सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं करते उनको.
Sometimes a devotee may become sick, or sometimes a devotee may be in an accident, or sometimes a devotee may have some problem, they lose their memory or something like this, and it becomes very confusing.
तो कभी कभी उनकी दुर्घटना में कुछ ऐसे देखते हैं कि उनके कुछ दुर्घटना हो जाती है, उनके कुछ अंग वो प्रतिभंग हो जाते हैं, या कभी कभी उनकी स्मृति चली जाती है और उनको फिर बहुत कठिनता होती है जीवन में.
But here in the 15th chapter, it becomes very, very clear that Krishna is always maintaining, because he's always maintaining the spirit soul, even if the gross body and subtle body begin to decline. Ultimately, the soul is always protected by Krishna.
और यहाँ पर हम देखते हैं 15वें अध्याय में यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि भगवान पालन सबका करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धीमे धीमे उसका क्षय होता है, तो भी भगवान जो आत्मा है उनका पूर्ण उनका पालन और उनका ध्यान रखते हैं.
In philosophy, one of the biggest questions people have is, why do bad things happen to good people?
और ऐसा प्रश्न सिद्धांत में लोग पूछते हैं ज्यादातर लोग कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा जीवन में क्यों होता है.
But if we want to understand that Krishna loves everyone, even when they are going through troubles, then we can only understand the depth of Krishna's love if we understand this philosophy given in the 15th chapter.
तो ऐसे लोग जो भगवान की सेवा में युक्त हैं और उनको जब जीवन में समस्याएं आती हैं, हम उसको समझ सकते हैं कैसे भगवान के प्रेम की वो गहराई है, अगर हम इस 15वें अध्याय के सिद्धांत को समझ जाएं.
So there is one transcendental spiritual equation that I'm showing you on the screen.
तो अभी जो प्रभु जी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक दिव्य आध्यात्मिक एक सूत्र है.
We can only understand the depth of Krishna's love if we understand the length of our existence and the breadth of our existence.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम की गहराई को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने अस्तित्व के लंबाई और चौड़ाई को समझ जाएं.
The length of our existence means that we have had many, many lives before.
तो यहां पर जो हमारे अस्तित्व का लंबा समय की बात है, इसका मतलब कि हम बहुत से पहले जीवन व्यतीत कर चुके हैं.
In other words, this life is just one chapter we've lived before and we will continue to live after.
इसका अर्थ है कि ये जीवन एक हमारे जो लंबा जीवन का जो एक पुस्तक हो, उसमें एक अध्याय है, पहले भी हम रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे.
And breadth of our existence means we are not just a physical body, but we have many aspects to our identity. We are physical body, subtle mind, but ultimately we are the spirit soul. So we must understand there are many aspects to our identity.
और यहाँ पर breadth का अर्थ है कि हम लोग हमारे पास स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी है, लेकिन उसके साथ में हम एक आध्यात्मिक चिन्मय आत्मा है और बहुत से हमारे अस्तित्व के बहुत से पहलू हैं।
If one doesn't understand that we have many, many lives, if they think we only have one life, and if someone doesn't realize we are a physical, subtle, and ultimately spiritual, they only think we are a body, then if they only have this limited understanding, then it will be very difficult for them to understand Krishna's love.
तो अगर कोई ये नहीं समझ पाते कि हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, वो अपने आप को सब यही जन्म समझते हैं कि एक ही जन्म हुआ है, और अपने आप को वो शरीर सिर्फ आत्मा नहीं मान करके बाकी सब कुछ मानते हैं, वो बाकी जो पहलू हैं और वो नहीं मानते हैं, तब उनको भगवान के प्रेम की गहराई वो समझ में नहीं आ पाएगी।
Therefore, when people ask us the question, why do bad things happen to good people? The first thing we tell them is that this is just one life. So you are just seeing one part of the story. And the second point is that you are just seeing that bad things are happening on a material level, but you don't understand on a spiritual level, the soul is also evolving from this experience.
तो इससे जब कोई प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ऐसे बुरी चीजें हो रही हैं अच्छे लोगों के साथ में, तो हमको बता सकते हैं कि वो सिर्फ एक जीवन ही देख रहे हैं, जो कि एक ही भाग है उनके पूरे लंबे जीवन का, और दूसरा वो सिर्फ देख रहे हैं किस प्रकार से उनको शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं या उनको मन को कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा कैसे निखर रही है, आत्मा कैसे उसकी उन्नति हो रही है, उसको नहीं समझ पाते।
एंड सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, बिकॉज मोस्ट पीपल टर्न अवे फ्रॉम गॉड और दे बिकम एथियस्ट because something difficult happens in their life and they feel God or Krishna is not protecting them.
तो ये समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार से, वो जब देखते हैं कि अच्छे लोग के साथ में भी ऐसा हो रहा है, तो उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास भगवान के ऊपर कम हो जाता है, उनको लगता है कि कृष्ण हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं।
But we should understand sometimes Krishna will protect us physically. And sometimes he may not protect us physically, but he's always protecting us spiritually.
तो हमें समझना होगा कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण शारीरिक रूप से हमारी रक्षा कर सकते हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदैव वो हमारे आत्मा की रक्षा कर रहे हैं।
Parikshit was a great devotee of Krishna.
परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के महान भक्त थे।
When the Brahmastra was aimed at his mother Uttara and he was in the womb, Krishna protected his body.
तो जैसे ही वो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज के ऊपर जब वो ब्रह्मास्त्र वहां पर प्रवेश करके उनको नष्ट करने वाला था, भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर की भी रक्षा की।
But later on, the same Parikshit, when he was cursed by the Brahmin boy Sringi to die in 7 days, then Krishna did not protect his body at that time. He let him die.
Jai. और बाद में वही परीक्षित महाराज को जब 7 दिन के अंदर उस श्रृंगी ने श्राप दिया था, तक्षक सांप उनको डसेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर की रक्षा वहां पर नहीं की।
Does that mean Krishna loved him in the beginning of his life but didn't love him later on?
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको शुरुआत आरंभ में उनकी उनको प्रेम किया और अंत में प्रेम नहीं किया।
Krishna loved him throughout his life, but at different times he arranged different things to bring Parikshit closer to him.
तो भगवान ने सदैव उनको प्रेम किया और अलग अलग समय पर अलग अलग उनको अलग प्रकार से उनको पालन किया, जिससे कि वो उनके और समीप आ सकें।
Therefore, the devotee is completely confident. Rakshishyati divishvasho. They have firm confidence that Krishna will protect me, not necessarily on the material level, but Krishna will always protect my soul.
इसलिए भक्तों को ये हमेशा पूर्ण विश्वास होता है कि रक्षिस अतीति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा सदैव करेंगे, भौतिक स्तर पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सदैव मेरी रक्षा करेंगे।
Therefore, the Acharya sing, Maro bhi, rakho bhi, Joy Chatohar, whatever your desire is, Krishna, you can kill this body, you can keep it alive, up to you. But I know that you will always maintain me in my relationship with you as the spiritual relationship.
इसलिए आजाद ये गीत गाते हैं कि आप मुझे या तो मारिए या तो रखिए, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आप मेरे आध्यात्मिक चेतना, आपके साथ जो संबंध मेरा है, उसको कभी वो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी.
So unless we have this trust and confidence in Krishna, it will be very, very difficult to learn to love Krishna.
तो जब तक ये विश्वास हम नहीं अर्जित कर पाते, हम उसी को प्रेम कर सकते हैं जिसके ऊपर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं.
And therefore, this knowledge of Krishna being the maintainer must be read and understood again and again.
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे पालन करते हैं, ये ज्ञान हमको बार बार श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए.
Okay, Prabhuji, maybe I'll stop here before I continue on and ask if anyone has any question they would like to ask.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इसके अभी यहाँ पर विराम देते हैं, अगर कोई प्रश्न किसी का है तब आगे उसके बाद बढ़ेंगे, कोई प्रश्न या जिज्ञासा तो हम पूछ सकते हैं.
Either they can unmute or they can write in the chat box as whatever you like.
तो या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और या तो फिर अपने हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हैं. मनोहरी सुभद्रा माता जी, प्लीज गो अहेड माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ.
Hare Krishna Prabhuji, dandavat pranam to you and
dandavat,
all.
Dandavat Mataji, dandavat.
Hare yeah, Krishna. Thank you, nice Prabhuji. Nicely you put out how Bhagavan protects us. You know, generally we have this concept of Bhagavan protecting our physical body and the mind, but beyond that, how he protects the soul. But still, you know, I have this question in mind that people when they suffer, we do pray for them, we do chant for them. So then, and also when we look at the way a person leaves his or her body, the, you know, not that all of them are that level of Parikshit Maharaj, but they suffer and then they leave. And so how do we see this, Prabhuji? Because that really gives ache, you know, to unable to digest the fact that person has to suffer so much. And so that, can you please enlighten?
Sure. Prabhuji, you would like to translate the question?
तो माता जी का प्रश्न ये है कि आपने बताया इस बारे में किस प्रकार से भगवान जो है वो आत्मा का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कभी कभी हम लोग दूसरे किसी भक्तों के लिए, उनके सदारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब भी करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, या फिर हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग बहुत कष्ट पा करके वो शरीर को छोड़ते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं के पश्चात वो शरीर को छोड़ते हैं.